स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 10 दिसंबर और दिन मंगलवार। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास, विपक्ष ने बिल को बताया विभाजनकारी।
महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम, उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
झारखंड में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा प्रचार। दिल्ली अग्निकांड में 11 लोगों की जान बचाने वाले राजेश शुक्ला से एक बातचीत।
अगर आप फायर ब्रिगेड या किसी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर को फोन करते हैं तो गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उस पर बहुत ज्यादा उसका टर्नआउट, किस तरह का बैकअप आएगा वहाँ पे, किस तरह के लोग आएंगे, कौन सी एजेंसीज आएंगी, वो सारा आपके इनिशियल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। सोमवार को देर रात तक चली तीखी बहस के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया। बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह बिल किसी भी तरह गैर संवैधानिक नहीं है। कांग्रेस ने इसे काला दिन बताया है और विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ हर मंच पर चुनौती देने की घोषणा की है। रूस और यूक्रेन के बीच एक ऐतिहासिक समझौते के तहत पूर्वी यूक्रेन में इस साल के अंत तक संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति बनी है। सोमवार को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों व्लादिमीर जेलेंस्की और पुतिन के बीच पेरिस में मुलाकात हुई। हालांकि रूस समर्थित सेना की वापसी पर कोई बात नहीं बनी। वार्ता में जर्मनी और फ्रांस के शीर्ष नेता भी शामिल थे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा कि बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
Endlich Lokalwahlen durchführen können, die dann auch von der OSZE akzeptiert werden. Dass das nicht ganz einfach ist.
बातचीत का मकसद स्थानीय निकायों का चुनाव कराया जाना है। मौजूदा हालात में दोनों पक्षों के लिए ये आसान नहीं है, इसलिए हम 4 महीने में फिर मिलने पर सहमत हुए हैं। इस बीच चुनाव के लायक माहौल तैयार करने के लिए काम किया जाएगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने महाभियोग के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूस और उनके चुनाव प्रचार के बीच साठगांठ की FBI जांच राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि ट्रंप के चुनावी प्रचार में FBI ने कोई जासूस नहीं लगाया था, जबकि ट्रंप इसका दावा करते रहे हैं। ट्रंप ने इसे FBI की तख्ता पलट की कोशिश बताया है। हमारे देश के साथ ऐसी चीजें की जा रही हैं, ये अपमानजनक है। किसी और राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अविश्वसनीय और कल्पनातीत रूप से बुरा है। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक है। ये गैर ईमानदारी है। ये बहुत दुखद दिन है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने रूस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं से 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भी ये प्रतिबंध लागू होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यह फैसला ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन है और राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। न्यूजीलैंड के एक निर्जन द्वीप पर सुप्त ज्वालामुखी के अचानक फट जाने के कारण 13 लोग मारे गए हैं, जबकि 8 लापता हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कहा है कि अब वहां किसी के जीवित बचे रहने की संभावना न के बराबर है। दुर्घटना के समय द्वीप पर कुल 47 लोग मौजूद थे। 13 लोगों को लोग मारे गए हैं, जबकि 8 लोगों को बचा लिया गया है। कनाडा के 2 मंत्रियों ने कहा है कि गूगल, अमेजॉन और फेसबुक पर टैक्स लगाया जाएगा। फ्रांस की ओर से भी इस तरह की घोषणा के बाद अमेरिका के साथ तलखी बढ़ी थी और ट्रंप प्रशासन ने फ्रांसीसी लग्जरी सामानों पर भारी टैक्स लगाने की चेतावनी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की आलोचना हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक बीमार बच्चे की तस्वीर को देखने से भी इनकार कर दिया है। ये बच्चा बेड की कमी के कारण अस्पताल के फर्श पर लेटा हुआ था। इस समय ब्रिटेन में चुनाव प्रचार जोरों पर है और 2 दिन बाद मतदान होने वाला है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायकॉट का आह्वान किया है। रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के आरोपों में म्यांमार की नेता आंग सान सू की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश होने के मद्देनजर ये अपील की गई है। BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 10 तारीख और दिन है मंगलवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत नागरिकता संशोधन बिल से। नागरिकता संशोधन बिल कल देर शाम या कहा जाए ठीक आधी रात को लोकसभा में पास हो गया। 311 वोट बिल के पक्ष में पड़े जबकि 80 वोट बिल के खिलाफ थे। बिहार की जनता दल यू और महाराष्ट्र की शिवसेना ने बिल के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री ने बिल के पास हो जाने पर खुशी का इजहार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। वहीं विपक्षी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने इसे विभाजनकारी करार दिया और बिल का विरोध जारी रखने का वादा किया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक बिल को फाड़ दिया था, वो भी इस बिल को फाड़ रहे हैं। सुनिए संदीप राय की रिपोर्ट।
लोकसभा में विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया है। सोमवार को इधर दिल्ली में जब संशोधन विधेयक पर गर्मागर्म बहस हो रही थी, पूर्वोत्तर के असम समेत कई राज्यों में इसके विरोध में बड़ी बड़ी रैलियां और मशाल जलूस आयोजित कर इसका विरोध किया जा रहा था। इस विधेयक पर शुरू से ही भारी विवाद रहा है और जब सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया गया तो सदन हंगामे में डूब गया। सोमवार को देर रात तक चली बहस के बाद वोटिंग हुई जिसमें पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े और विधेयक ने लोकसभा की पहली बाधा पार कर ली। विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए ट्वीट किया कि ये भारत की सदियों पुरानी परंपरा और मानवीय मूल्यों में विश्वास के अनुरूप है। असल में विपक्ष इस विधेयक को भारतीय संविधान की मूल भावनाओं और परंपराओं के खिलाफ बताता रहा है। बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में ही इस विधेयक की प्रति फाड़ दी। सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभाल रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल का बचाव करते हुए कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है।
धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन?
अमित शाह ने अपनी तकरीर में कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि इस विधेयक की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया। इसका जवाब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल असंवैधानिक और समानता के मूल अधिकार के खिलाफ है।
आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी धर्म के नाम पे। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में टू नेशन थ्योरी की किसी ने नींव रखी थी तो 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी।
दिन में जब अमित शाह ने बिल पेश करने की अनुमति मांगी तो सदन में भारी हंगामा हुआ और वोटिंग के बाद ही ये पेश हो सका। बहस के दौरान ओवैसी ने कहा कि इस बिल की वजह से असम में NRC के तहत सिर्फ मुसलमानों पर केस चलेगा और सिर्फ बंगाली हिंदुओं के वोट के लिए बीजेपी सरकार ये सब कर रही है।
कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूँ। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। 1957 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूँ। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
बिल पास होने के बाद ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि आधी रात को एक झटके में जब पूरी दुनिया सो रही थी, स्वतंत्रता, बराबरी, भाईचारा और इंसाफ के भारत के आदर्श के साथ धोखा कर दिया गया है। बिल का समर्थन करने वाली पार्टियों में JDU और शिवसेना भी शामिल हैं। JDU के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के स्टैंड को लेकर निराशा जाहिर की है और कहा है कि पार्टी के संविधान के पहले पेज पर ही 3 बार सेकुलर शब्द लिखा गया है और इसका नेतृत्व गांधी के विचारों से निर्देशित माना जाता है। ऐसी पार्टी ने नागरिकता संशोधन बिल को समर्थन दिया है। उधर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने इसे संविधान के इतिहास का एक काला दिन बताया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने इस बिल को खारिज कर दिया और कहा कि हर फोरम पर इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा जहां इसे सरकार बुधवार तक पेश कर सकती है।
ये थे संदीप राय। बिल का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह बिल सीधे सीधे भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। उनके अनुसार इस बिल में धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कही गई है जो कि भारतीय संविधान की बुनियादी सोच का ही उल्लंघन है। बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चंचल सिंह से बात की और पूछा कि मौजूदा बिल किस तरह से संविधान का उल्लंघन है।
जो बिना डॉक्यूमेंट के आए हैं और बाय चांस वो मुस्लिम हैं, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हैं, तो वो इलीगल माइग्रेंट ही कहलाएंगे और वो उसके लिए एप्लीकेशन देने के लिए लायक नहीं रहेंगे, मतलब एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अभी तक यही थी कि कोई भी एलिजिबल नहीं था, अब हो जाएगा कि वो एलिजिबल हो जाएंगे जिनको एग्जेम्पशन दी जा रही है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। तो एक यहाँ पे धार्मिक आधार पे भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अपेरेंट है, जो कि आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद खासकर 14 और 15, इसका वायलेशन के लिए चैलेंज हो सकता है, बहुत एलिजिबल है कि ये चैलेंज हो जाएगा और गवर्नमेंट को उसको डिफेंड करना इन ए कोर्ट इन ए रिट पिटीशन दैट इट वायलेट्स माई फंडामेंटल राइट, वो दिक्कत होगी, डिफिकल्ट होगा।
जी, विपक्ष का ये आरोप है कि संविधान के कुछ प्रावधानों को इससे कमजोर किया जा रहा है या उनका उल्लंघन किया जा रहा है, किस हद तक ये सही है?
बहुत हद तक ये एक जायज आरोप लग रहा है, क्योंकि हमारा संविधान का आधार है समानता, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और एनीथिंग। तो यहाँ एक जब डिस्क्रिमिनेशन अपेरेंट है तो उन भावनाओं पे आघात लग रहा है, पर उसको इससे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, क्योंकि जब हम विधायन या लेजिस्लेशन का वैलिडिटी जब सुप्रीम कोर्ट चेक करती है या हाईकोर्ट चेक करती है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर लेजिस्लेशन पे नहीं लगाती, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे लगता है, संविधान संशोधन कानून पे लगता है
जी।
पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो लेजिस्लेशन अभी प्रस्तावित है और जो बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ये इम्यून हो गया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज मेनी ग्राउंड्स एंड पहला ग्राउंड तो यही है कि आर्टिकल 13 उसके आधार पे ही ये डिक्लेयर कर सकते हैं इफ सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स दैट कि ये किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है।
संविधान में नागरिक होने का मतलब क्या है?
नागरिक होने का मतलब है कि इस कम्युनिटी के अधिकारों, यहाँ रहने का जिम्मेदारियों, उन सब में आपकी भागीदारिता हो जाती है, आपको सारे अधिकार मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक सिंपल सी बात बताते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हम यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या घर बना सकते हैं या वोट दे सकते हैं, जो पॉलिटिकल और अदर राइट्स हैं वो तो मिलते ही हैं। इवन अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो वो अनुच्छेद सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, जैसे विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वो भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये फायदे हैं, आप फॉर्मली लीगली मेंबर हो जाते हैं इस कम्युनिटी के और उसके सारे अधिकार और दायित्व भी आपके आपके पास आ जाते हैं।
ये थे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के प्रोफेसर चंचल सिंह। रविवार दिल्ली की एक अनाज मंडी में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जलती इमारत में सबसे पहले घुसने वाले दमकल कर्मियों में से एक थे राजेश शुक्ला, जिन्होंने 11 लोगों की जान बचाई। वो खुद भी LNGP अस्पताल में भर्ती थे, जहां से अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है। BBC संवाददाता बुशरा शेख ने राजेश शुक्ला से बात की और पूछा कि इमारत के भीतर जब वो दाखिल हुए तो वहाँ क्या मंजर था।
5:22 की कॉल है शायद, वहाँ जब पहुँचे तो तीनों फ्लोर अब्लेज थे, ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ सीन पे थी, स्मॉल वाटर टेंडर्स, और फायर फाइटिंग ऑपरेशन फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा था। फैक्ट्री का ही कोई था बंदा, उसने बोला कि सर अंदर एक आदमी है सेकंड फ्लोर पे जो बात कर रहा है फ़ोन पे और अपनी लोकेशन बता रहा है, ट्रैप्ड है। तुरंत से मैंने एक छोटा सा टीम बनाया जिसमें 3 लोग थे, फिर हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट किए, बहुत ज़्यादा हीट थी उसमें, बहुत ज़्यादा फ्लेम्स थी। जब वहाँ पहुँचे उस रूम में जहाँ उसको लोकेट किया, जो हमारे नंबर्स हमने एक्सपेक्ट किए थे 1 या 2 लोग, मैक्सिमम 2 लोग का नंबर्स एक्सपेक्ट किया था, इट वॉज़ फार बियॉन्ड दैट। देयर वॉज होल रूम वॉज इकोइंग विद मर्मरिंग साउंड, पीपल टेकिंग देयर लास्ट ब्रेथ्स, गैस्पिंग लास्ट ब्रेथ्स जो होते हैं ना, वो कहीं कहीं सुनाई दे रहा था, रिंगटोन सुनाई दे रहा था मोबाइल में कहीं कहीं। बाकी साइन ऑफ लाइफ इट इज़ वेरी हार्ड टू जज इन अ हेजी इन्वायरमेंट वेर एवर देर इज स्मोक, बहुत ज़्यादा हेजी इन्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा डार्क भी था। तो जो मिलते गए, जिनके विस्पर्स सुनाई दे रहे थे, ऑडिबल जो भी हुए, वो फटाफट एक्सटिकेट करना शुरू किए। पहले जो लोग कॉन्शियस थे उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, बहुत सारे लोग अलाइव थे उसमें, एंड वी टुक देम अलाइव ओनली, हमने अलाइव ही निकाला था उनको, एक्सटिकेट किया था। तो पीछे मुझे पानी से सपोर्ट कर रहे थे ताकि हम लोग जले नहीं उन फ्लेम से जो रूम से निकल रही थी। पीछे जितेंद्र थे और छुट्टन साहब थे, देवर सपोर्टिंग अस विद ब्रांचेस, पीछे से सपोर्ट कर रहे थे और हम लोग धीरे धीरे एडवांस कर रहे थे। उसी फ्लोर पे सामने वाले रूम को जब सर्च किया तो वी वर टेकन बाई सरप्राइज, देवर अबाउट 30 to 35 पीपल एग्जैक्ट नंबर उस समय कोई गिनता नहीं है, बट एक एस्टिमेटेड नंबर जो था दैट इज़ 30 to 35 हमने वहाँ पे स्पॉट्स किए और इमीडिएटली मतलब विदाउट लूजिंग टाइम उनको एक्सिक्यूट करना शुरू कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 12 बॉडी, 12 मतलब अलाइव। उसके बाद जो सेकंड स्पॉटिंग हुई, सेकंड स्पॉटिंग में फिर 30 to 35 पीपल वर एक्सिक्यूटेड। उसमें से बाद में हमें पता चला हॉस्पिटल में कि 43 वर डेड। सिचुएशन वॉज फार बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। सो एक रिमोर्स था कि काश हमें थोड़ा पहले पता चल जाता, हमें थोड़ा पहले कॉल मिल जाती, सही टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती, तो दिस सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट। तो एनी हाउ जब लाइफ इन्वॉल्व होता है तो वी टेक रिस्क। फिर बैकअप टीम्स आ गई, हमें पता था कि काफ़ी देर तक धुएं में हमें काम करना पड़ेगा, तो वी एसेट्स पहन के 3 आदमियों की टीम गई। आपके पास एक टैक्टिक्स होता है, लेकिन माउंटेन ड्यू का प्रचार का वर्ड बड़ा सही फिट होता है, डर के आगे जीत है। इफ़ देर इज़ लाइफ इन साइड यू के नॉट वेट। आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते उस समय, आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपना हर्ट सब यूज़ करना पड़ता है, ऑल वर्क्स इन अ सिंगल गो। अगर इसी सिचुएशन की बात करें मैम, तो वी वर डूइंग फायर फाइटिंग एज वेल एज रेस्क्यू ऑपरेशंस, और अंदर बाद में जब हमने पूरा ऑपरेशन क्लोज किया तो हमने फाइनल सर्चिंग की, तो वी गॉट 5 LPG सिलेंडर्स। तो सी इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। हजार्ड हमेशा ही रहता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, यू कैन नॉट लोकेट इट, तो वो हमेशा ही रहता है, बट वी नो कि ये इट इज़ प्रोफेशनल हजार्ड, हम उसको एस्केप नहीं कर सकते, हमें उस एनवायरमेंट में काम करना ही होता है। और फैमिलीज ऑल टुगेदर, देखिए कि कोई भी अपने किथ एंड किन के बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता, लेकिन समहाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स। मुझे अपने लेफ्ट नी में लगी थी, आई कैन नॉट क्लाइंब दी स्टेयर्स, आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन इट, बट स्टिल इट्स ऑल, आई एम हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू सेव सम पीपल, एंड आई ऑल्सो हैव अ रिमोर्स दैट आई कुड सेव मोर पीपल। अगर आप फायर ब्रिगेड या किसी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर को फ़ोन करते हैं तो गिव कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। उस पर बहुत ज़्यादा उसका टर्नआउट, किस तरह का बैकअप आएगा वहाँ पर, किस तरह के लोग आएंगे, कौन सी एजेंसीज आएंगी, वो सारा आपके इनिशियल इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म आई विल अपील टू द पब्लिक कि पहला इन्फॉर्मेशन अगर आप सही दें तो सिचुएशन को संभालने में बहुत ज़्यादा मदद मिले।
ये थे दिल्ली की अनाज मंडी में लगी आग में 11 लोगों की जान बचाने वाले दमकल कर्मी राजेश शुक्ला। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो गया है, बताएं संदीप क्या कहते हैं आज के अखबार।
जी इकबाल, दिल्ली से छपने वाले आज के सभी अखबारों में लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। अखबारों में दूसरी महत्वपूर्ण खबर कर्नाटक में हुए उपचुनाव के नतीजे के बारे में है, जहां 15 में से 12 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। ये नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हार होती तो वहां बीजेपी की येदुरप्पा सरकार पर
अल्पमत में आ सकती थी, लेकिन बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की।
जी, अन्य अखबारों की तरफ चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि UNDP मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत ने एक अंक सुधार करते हुए 129वां स्थान हासिल किया है। 189 देशों में पहला स्थान नॉर्वे का है, जबकि बुरुंडी सबसे नीचे है। अमर उजाला की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि हिंदू महासभा ने मुस्लिम पक्ष को ज़मीन देने से इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने के अपने आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा है कि विवादित ढांचा मस्जिद ही थी। नवभारत टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि सोमवार को राष्ट्रपति भवन की ओर फीस वृद्धि के खिलाफ कूच करते JNU के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने छात्रों को काबू करने के लिए 3 मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया था। कुछ दिन पहले भी JNU के छात्रों के मार्च पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें
कल नागरिकता संशोधन विधेयक पर जब संसद में बहस हो रही थी तो इस वजह से ये मार्च जो है छात्रों का वो बहुत ज़्यादा मीडिया में जगह नहीं बना पाई, ये खबर ही है।
हाँ, फिर भी आज के दिल्ली के जो अखबार हैं उसमें कहीं ना कहीं खबर फ्रंट पेज पे ली गई है।
जी,
जनसत्ता की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को केंद्र द्वारा रद्द किए जाने के फैसले की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और माकपा नेता, इन लोगों ने ये याचिका दायर की।
बहुत शुक्रिया संदीप आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब चलते हैं झारखंड, जहां के आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा और आज उसके लिए जो प्रचार थम जाएगा। रांची की मुसलमान महिलाएं बीते 5 साल के बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुवर दास के शासन को कैसे देखती हैं, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार ने रांची में कुछ मुस्लिम महिलाओं से बात की।
आपका नाम खुशबू खान है?
जी, मेरा नाम खुशबू खान है।
तो आपके लिए पिछले 5 साल का शासनकाल, आप क्या बताएंगे कि झारखंड की जो राजनीति है उसमें एक हिंदू महिला होना, एक मुस्लिम महिला होना या फिर किसी भी मजहब का महिला होना, कुछ फर्क है या सारी महिलाओं का ट्रीटमेंट राजनीति एक तरीके से ही कर रही है या फिर बिल्कुल इग्नोर कर रही है?
मुझे लगता है कि यहाँ झारखंड की अगर बात करें, क्योंकि बात यहाँ मुस्लिम महिला की हो रही है, तो मेरे हिसाब से जो 5 साल की अगर हम बात करें या पिछले 10 साल की बात करें, 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पे आदिवासी पिछड़े हैं लेकिन उससे भी ज्यादा पिछड़ी मुस्लिम महिलाएं हैं। आप देखेंगे कि इनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है क्योंकि एजुकेशन नहीं है,
इनको नहीं पता है कि कौन कैंडिडेट।
नहीं, मैक्सिमम आप देखेंगे, आप अगर हमारे अंदर गलियों में जाएंगे और महिलाओं से बात करेंगे तो एजुकेशन की बड़ी कमी है। रीजन सीधे सीधे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने हमेशा मुस्लिम महिला, पूरे मुस्लिम समुदाय को ही अनदेखा किया हुआ है। उन्होंने कभी भी जो सेंसेक्स के हिसाब से जो कहते हैं कि 15% की हमारी आबादी है, तो हमें नौकरी कहाँ है? दिखाया जाता है कि हम मुस्लिम महिला के साथ में, लेकिन जो बेसिक डिमांड है मुस्लिम महिलाओं की, जो बेसिक नीड है, वो पूरी नहीं की जाती। हमारे यहाँ नौकरियां नहीं है, गवर्नमेंट हमें नौकरियां नहीं देती।
तो सरकार तो कह रही है, जो बीजेपी की केंद्र की जो सरकार है, कि 3 तलाक खत्म करने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा, आप लोग इससे सहमत हैं?
जी, इससे तो सहमत है।
फायदा हुआ है।
जी,
आपका क्या ओपिनियन है?
देखिए, मेरा ओपिनियन है कि ये 3 तलाक जो है टोटली जो ये हमारा पर्सनल टॉपिक है, इसको सरकार अपना खींचे, उन्होंने बहुत इस पे खिचड़ी पकाई है और इस पे बहुत हॉट हॉट टॉक्स हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट बनने, सरकार बनने से कहीं से भी ताल्लुक रखता है। हमने हमेशा से इसका विरोध किया है और आगे भी करेंगे।
तो मैं खुशबू जी यहाँ पे देख रहा हूँ कि महिलाओं के जो बीच जो राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए वो न के बराबर है, तो इसे आप कैसे देखती हैं?
मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिकल हिस्सेदारी होगी महिलाओं की, विधानसभा में महिलाएं आए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनको नौकरी मिले, तो अगर एक महिला पढ़ेगी तो पूरा इनका समाज पढ़ेगा। हमारा यही मानना है कि हम भी अब आधी आबादी है, हम सब घरेलू महिलाएं, घर के पुरुष डरते हैं। आज जो सोसाइटी में हो रहा है, आप देखें, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, रोजाना छिनतई हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। सरकार को इन सारे टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहिए, महिलाओं की एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, इनको नौकरी दिलानी चाहिए, ये सारे बर्निंग इश्यूज होने चाहिए, ना कि धार्मिक मुद्दों पे वो आज जैसे बहस करती आई हैं, अभी वो सबका, उनका जो इतना नारा लगा रही हैं सबका साथ सबका विकास, ये करें, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की तरक्की है तो सबको मिलाकर ही चलने में है।
ये थी रांची की कुछ मुस्लिम महिलाएं, जिनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार। और जिस तरह झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, उसी तरह ब्रिटेन में भी चुनाव हो रहा है, इत्तेफाक से वो भी 12 दिसंबर को ही है। तो अब उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भारतीय प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटानिया अधिकारियों की गोली चलाने की घटना को 100 साल हो चुके हैं। माना जाता है कि इस गोलीकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए थे। इसी साल अप्रैल में तत्कालीन ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने ब्रितानी संसद में इसके लिए दुख प्रकट किया था, लेकिन ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। उनकी मांग है कि ब्रितानी सरकार आधिकारिक तौर पर इस नरसंहार के लिए माफी मांगे, और इस बार ब्रिटेन के चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सुनिए लंदन से बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट मानसी दाश की आवाज में।
वीर अमरजीत ब्रिटेन में ही पैदा हुए और उनकी परवरिश भी यहीं हुई, लेकिन उनका दिल धड़कता है भारत के लिए। भारतीय मूल के वीर अमरजीत ब्रिटेन में जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माफी का अभियान चला रहे हैं। वो कहते हैं,
I think it matters to me because one of my ancestors are from India.
मुझे लगता है कि ये मेरे लिए मायने रखता है क्योंकि मेरे पूर्वज भारत से हैं। भारत में जो अत्याचार हुए हैं उस पर मुझे भी गहरा दुख है। मैं अभी खुद को एक पंजाबी सिख की तरह देखता हूँ।
पेशे से वीर अमरजीत यहाँ एक ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। उनकी जिंदगी का मिशन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार से माफी की मांग की मुहिम को जारी रखना।
हमारी दो मांगे हैं, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी और दूसरी ब्रिटेन के स्कूल सिलेबस में बदलाव किया जाना।
लेबर पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर वो 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव के बाद सत्ता में आई तो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगेगी और स्कूलों के सिलेबस में ब्रिटिश राज के अत्याचारों के बारे में भी पाठ शामिल करवाएगी। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में 1650 राउंड फायरिंग हुई थी जिसमें 1500 के करीब प्रदर्शनकारी मारे गए थे। इस साल अप्रैल में इस हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए। इस अवसर पर ब्रिटेन के संसद में एक सभा का आयोजन भी किया गया था। उस सभा में इंदु सेठ भी मौजूद थीं।
ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के जो इंडियंस थे वही थे।
वहाँ केवल एशियाई मूल के ब्रिटिश सांसद ही मौजूद थे, ब्रितानी सरकार की ओर से वहाँ कोई मौजूद नहीं था।
लेकिन 100 साल बीत जाने के बाद भी अब तक ब्रितानी सरकार ने इस नरसंहार के लिए माफी क्यों नहीं मांगी है? मैनचेस्टर में रहने वाले जगतार सिंह अजमाल कहते हैं,
मेरा ख्याल है कि दो चीजें हैं जो फॉर्मल अपॉलजी को रोक रही हैं। एक तो यह है कि उनको डर है कि इससे फाइनेंशियल क्लेम ना लोग करना शुरू कर दें जो मारे गए बंदे, लेकिन दूसरा डर एक और है कि इन्होंने ऐसी ज्यादतियाँ कॉलोनियल टाइम पे बहुत की हैं अप एंड डाउन द वर्ल्ड, तो इनको डर है कि अगर ये अपॉलॉजी हम एक्सेप्ट करते हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से भी ऐसी मांग आएगी कि आप वहाँ भी फॉर्मली हमें अपॉलॉजी दो।
ब्रिटेन में रहने वाले अधिकतर प्रवासी भारतीय चाहते हैं कि ब्रितानी सरकार जलियांवाला बाग में हुई घटना के लिए जल्द माफी मांगे, लेकिन उन्हें ये भी शक है कि कहीं लेबर पार्टी का माफी मांगने का वादा केवल एक चुनावी जुमला भर बनकर न रह जाए।
ये थी मानसी दाश और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह और आज सबसे पहले बात मुक्केबाजी की। विश्व चैंपियन की रजत पदक विजेता सोनिया चहल 57 किलोग्राम भार वर्ग में और इंडिया ओपन की चैंपियन भाग्यवती 81 किलोग्राम भार वर्ग के दम पर रेलवे चौथी अलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। हरियाणा दूसरे और अखिल भारतीय पुलिस तीसरे स्थान पर रही। सोनिया ने युवा विश्व चैंपियनशिप हरियाणा की साक्षी को 3-2 से हराकर दूसरा स्वर्ण पदक जीता। भाग्यवती ने शैली सिंह को 5-0 से मात दी। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फिजी के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर रॉय कृष्णा को अपनी टीम एटीके की ओर से शानदार प्रदर्शन करने के लिए नवंबर के महीने के लिए ISL हीरो के पुरस्कार से नवाजा गया है। कृष्णा ने 3 मैचों में 3 गोल दागे और साथ ही गोल करने में मदद भी की, जिससे एटीके की टीम को नवंबर के पूरे महीने में हार का सामना नहीं करना पड़ा। एटीके टीम के ही डेविड विलियम्स ने अक्टूबर में ये पुरस्कार हासिल किया था। स्ट्राइकर ने जमशेदपुर AFC के सर्गियो कास्टेल, उड़ीसा FC के एड्रियाने संताना, AFC गोवा के मुर्ताडा फॉल और बेंगलुरु AFC के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को पछाड़कर ये पुरस्कार अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर लाइनल मेसी ने ला लीगा में 35वीं हैट्रिक के साथ नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे बार्सिलोना की टीम रियल मालोर्का को 5-2 से हराकर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई। मेसी के 3 गोल के अलावा एंटोनी और लुई ने भी बार्सिलोना की ओर से 1-1 गोल किया। बार्सिलोना के स्ट्राइकर लाइनल मेसी की ये ला लीगा में रिकॉर्ड 35वीं हैट्रिक है। खेल समाचारों में आज इतना ही
और अब चलते चलते प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। सोमवार को देर रात तक चली तीखी बहस के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच एक ऐतिहासिक समझौते के तहत पूर्वी यूक्रेन में इस साल के अंत तक संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति बनी है। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने महाभियोग के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने रूस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं से 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूजीलैंड के एक निर्जन द्वीप पर सुप्त ज्वालामुखी फटने के कारण 13 लोग मारे गए हैं जबकि 8 लापता हैं। कनाडा के 2 मंत्रियों ने कहा है कि गूगल, अमेजॉन और फेसबुक पर टैक्स लगाया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने एक बीमार बच्चे की तस्वीर को देखने से भी इनकार कर दिया। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी तिलक भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटों आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।